देवदारू, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठता है और इतना ऊपर कि पास वाली चोटी से भी ऊपर उठ जाता है। एकदम द्विलोक को भेद करने की लालसा से नीचे शाखाएं मृत्युलोक को अभेदान देने की मुद्रा में फैलती जाती है, मानो कह रही हूं भय नहीं मैं जो हूं। प्रत्येक शाखा की झबड़ीली टहनियां कटीले पत्तों को ऐसे लहरदार छंदों का वितान बनाती है कि छाया चेरी सा अनुगमन करती है। जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रवाहित हुआ था। पेड़ क्या है, किसी सुलझे हुए कवि की चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार विटानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद कैसी शान है। गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी स्पर्धा है। प्राण के आवेग की कैसी उल्लासकार अभिव्यक्ति है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो यह क्या है। क्यों क्यों ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू कर वेदिका को ही पसंद किया था। कुछ बात होनी चाहिए। कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे, उन्हें कमी किस बात की थी। कालिदास ने बताया है कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत, निष्प्रयोजन तो कैसे कहे, समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है, प्राणों का उल्लास नर्तन, जड़शक्ति के दुर्वार आकर्षण को पराभूत करके विपुल व्योम मंडल में विहार करने का अर्थातीत आनंद। कहते हैं शिव ने जब उत्साहतिरेक में उद्यम नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रसभाव विवर्जित नृत्य। रस का अर्थ है भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं भाव भी नहीं। नाचने वाला का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं, केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने के लिए एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास। यह एकमात्र लक्ष्य ही छंद भरता है, उसी से उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल धमाचौकड़ी और लष्टम पष्टम उछल कूद के सिवा और कुछ न होता। तांडव की महिमा आनंदोमुखी एकाग्रता में है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है। ध्यान धारणा और समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास का नाम समाधि है। देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है। शिव का निर्वात निष्कंप इन प्रदीप रूप दूसरे प्रकार का है। दोनों में एक ही छंद है। शिव ने समझ बूझ कर ही देवदारू द्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा। देवदारू के नीचे समाधिष्ट महादेव टुक मिल रहा है, शानदार टुक। कौन कहता है कालिदास ने टुक मिलाने की परवाह नहीं की। मेरा मन कहता है कालिदास भी तुकाराम थे, टुक मिलाने के फौजी वागविलासी। मगर ये टुक भोरे किस्म के नहीं होते थे, यह तो निश्चित है। झगड़े रगड़े बगड़े डगड़े, ये भी कोई टुक है। मगर सारी दुनिया इसी को टुक कहती आ रही है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, सारी दुनिया पागल नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सही है कि बात बात में टुक मिला करता है। अगर ऐसा ना होता तब बेटुकी हंकने वालों को बुरा ना माना जाता। जो लोग टुक की बात कहते वे शब्द की ध्वनियों का टुक तो नहीं मिलाते, फिर टुक है क्या। टुक वह है जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा और समाधिष्ट महादेव की निर्वात निष्कंप प्रदीप की ऊर्ध्वगामिनी ज्योति में है। अर्थात टुक अर्थ में रखता है। ध्वनि साम्य के टुक में कुछ न कुछ अर्थचारुता होनी चाहिए। ध्वनि साम्य साधन है, टुक अर्थ का धर्म होना चाहिए। मगर ऐसा कहना खतरे से खाली नहीं है। किसी नए आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत की है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सारी पंडित मंडली उस गरीब पर बरस रही है। अगर टुक अर्थ में मिल सकता है तो लय में क्यों नहीं मिल सकता। मेरे अंतर्यामी कहते हैं टुक तो अर्थ में रहता है, लय में नहीं रहता। बहुत से लोग अंतर की आवाज को आंख मूंद कर मान लेते हैं, मैं नहीं मान पाता। आंख खोलने पर भी यदि अंतर की आवाज ठीक जचे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर का तुक मिल जाता है। शिवजी ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए भी तो देवदारू को चुना था। अंतर्यामी भी बाह्यामी के साथ ताल मिलाते रहे, यही उचित है। महादेव ने आंखें मूंद ली थी, देवदारू ने खोल रखी थी। महादेव ने जब आंखें खोल ली तो तुक बिगड़ गया, छंदो भंग हो गया। त्रैलोक्य को मदविहल करने वाला देवता भस्म हो गया। उसका फूलों का टुनीर जल गया, रत्नजटित धनुष टूट गया, सब गड़बड़ हो गया। सोचता हूं उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी। क्या इतनी ही फक्करता मस्ती से झूम रहा होगा, क्या ऐसा ही बेलोस खड़ा रहा होगा। शायद हाँ, क्योंकि शिव की समाधि टूटी थी। देवदारू का तांडव रसा भाव विवर्जित महानृत्य नहीं टूटा था। देवता की तुलना में वह निर्विकार रहा, काठ बना हुआ। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने देवता का काठ देवदारू नाम दिया हो। पक्कड़ हो तो अपने लिए ही हो बाबा, मनुष्य के लिए निरेकात हो। दया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, निरेकात। ऐसे में तो देवता ही भला, कहीं ना कहीं उसमें दिल तो है। मगर यहां भी कैसे कहा जाए, देवता की दिल होता तो लाश्रभ भी होती, लाश्रभ होती तो आंखों की पलकें भी झपती, लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, पलकी उसकी झपती नहीं। एक क्षण के लिए उसने आंखें मूंदी तो अलर्ट हुआ, बहुत सावधान, सदा जागृत। अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे, जहां आंखें झुकनी चाहिए वहां उनकी आंखें झुकती थी, जहां टकटकी बांधनी चाहिए वहां बच जाती थी। पार्वती जब वसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई संचारदी पल्लविनी लेटा की भांति उनके सामने आई, तो उनके पार्वती के बिंब फल के समान अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बन गई, फिर उनकी आंखें झुकी भी, वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए, वे देवताओं में मनुष्य थे महादेव। उस दिन देवदारू चूक गया, वह सब देखता रहा, इतना बड़ा अनर्थ हो गया और अपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा, वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक्की बात है, महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं, अपुष्पा फलवंतो ही। देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। तो क्या हुआ, यह सब मनुष्य की आत्मकेंद्रित दृष्टि का प्रसाद है, देवदारू को इससे क्या लेना देना, वह तो जैसा है वैसा बना हुआ है। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काठ कहो, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो, नाम में क्या धरा है, मुमकिन है इसका पुराना नाम देवदारू हो, देवतरु हो, देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी, देव होकर वह छंद है और तरु होकर अर्थ। छंद समष्टि व्यापनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राणवेग का नाम है, अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। जहां बैठकर लिख रहा हूं वहां से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सा दिख रही है, कैसी मोहक शोभा है, वृक्ष और भी है, लोगों ने नाम भी गिराए हैं पर सब छिप गए, दिखते हैं आकाश चुम्बी देवदारू, लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्षों की फुर्गी पर से लुढ़का दिया जाए तो फुर्गियों पर लोटता हुआ हजारों फीट नीचे तक आ सकता है अनायास, पर ऐसा लगता ही भर है, भगवान न करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी पसली चूर हो जाएगी, जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा। लगने में बहुत सी बातें गलत होती है, इसलिए कहता हूं कि लगना अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है, अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई है, लगता है सो मन का विकल्प है, अंतर जगत की स्पृहा मात्र है, छंद है, दोनों में कहीं तालतुक मिल जाता तो काम की बात होती, नहीं मिलता यह खेद की बात है, तालतुक मिलना है अर्थ है, न मिलना अनर्थ। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता रहता है, मजेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है, अलग जो न लगे, लगता है पर नहीं लगता, यह भी कोई तुक की बात हुई, तुक की बात तब होती जब लगना नहीं लगता, लगना अलग ना होता, इसलिए कहता हूं कि तुक अर्थ में है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया था उसे क्या लगा था कह नहीं सकता, बात औरों को भी कोमेमेस लगी होगी, तभी सबने मान लिया, जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को ना लगे सो अनर्थ। अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया है, और भी समझाकर कहा है, यह अलगाव मैपन है, अहंकार है, इधर कवि लोग हैं उन्हें हमेशा कुछ देखकर कुछ ना कुछ लगता रहता है, खुलेआम कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों कहते हो बाबा कि मुझे ऐसा लग रहा है, दुनिया की ओर भी देखो, वह तुम्हें पागल कहेगी, पागल को भी तो कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ, कवि को जो कुछ लगता है उसके लिए वाह वाह कह के उसे सिर उठा लेती है, कुछ समझ में नहीं आता, हौ ही बौड़ी बिरह सब कई बौड़ो सब गाँव। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं, उन्हीं की बात याद आ गई थी, बात इतनी सी ही थी कि कोई बिरह की मारे स्त्री कह रही है कि मैं ही पागल हो गई हूँ या सारा गांव ही पागल हो गया है, क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं, कहा जान ये कहत है सिसही नाव, बिरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है, जो सबको ठंडिया लग रहा है उसे वह डाहक मान रही है, पागलपन ही तो है, मगर जब बिराही ने उसे दोहा छंद में बांध दिया तो बात बिल्कुल बदल गई, हाय हाय कैसी विरह वेदना है, कुछ सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है, हृदय के भीतर जलने वाली विरहाग्नि ने उसे किसी विरह अग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा, हे भगवान तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है, अर्थात विरहनी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। पागल का लगना लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है, बात उलट कर कही जाए तो एक प्रकार होगी, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को नहीं वह पागल है। लगने लगने में भी भेद है, जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को ही लगे वह अनर्थ है, अर्थ सामाजिक होता है। मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं, मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं, पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत भागते भी देखा है और भूत भगाते भी, भूत भी लगता है सब लगा लगी बहम ही होती होगी, आंखों को भी बिहारी जानते थे, कह गए हैं लगा लगी लोयन करे नाहक बन बधि जाए, नाहक अर्थात बेमतलब निरर्थक। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान कहते थे। विद्या उनके मुंह से फचाफच निकला करती थी। शास्त्रार्थ में तुम्हें बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे, विद्या के जोर से नहीं, फचाहट के आघात से। प्रतिपक्षी मुंह पे पोछता हुआ भागता था। अगर कुछ कैरे का हुआ तो दैहिक बिल से जय पराजय का निश्चय होता था। मेरे सामने ही एक बार खासी गुट्टम गुट्ठी हो गई। गांव ज्वार के लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी फचाफच वाणी और भीमकाया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं, हराया जाता है। पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे तो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों को ही नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते थे। गायत्री का मंत्र जो उनके मुंह से आल्हा जैसे सुनाई देता था और देवदारू की लकड़ी उसके अस्त्र थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे और अंधकार भयंकर सुनसान, क्या देखते हैं कि आगे दनादन ढेले गिर रहे। पंडित जी का अनुभवी मंत्र तार गया कि कुछ डाल में काला है, मनुष्य इतनी तेजी से ढेले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे, पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है, केवन अर्थात कौन। पीछे मुरकट्टा घोड़ी पर चढ़ा चला आ रहा था, टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों के जाति भेद की जांच भी की थी। कुल 23 किस्म के हैं। मुरकट्टा एक भूत ही है, मूर की जांच की थी, मूर नहीं है। छाती पर दो आंखें मसाल की तरह जलती रहती है, घोड़े पर चढ़कर चलता है। सो पंडित जी से उलझने की हिमाकत की। इस दुरंत मुरकट्टे से ने डरने वाला कोई और होता है। पंडित जी ने जूता उतार दिया, वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक थी। जमाजम गायत्री पढ़ने लगे, देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी, देर अड्डे पर डंडा। बिचारा मुरकट्टा त्राही त्राही कर उठा, अब की बार छोड़ दो पंडित जी, पहचान नहीं सका था, अब फिर यह गलती नहीं होगी, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया, नहीं तो यह सारे गांव ज्वार में कंटक समाप्त ही हो गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी और अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था, फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन था। उस दिन मेरे बालचित्त पर देवदारू की धाक जम गई थी। अब भी क्या दूर हुई है, आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ, लाख लाख मुरकट्टों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों जैसे मुरकट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की चीज उनके पास होती ही नहीं, मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ से। लता ही कट गई तो फूल की संभावना कहाँ रही। लतायाम पूर्व लूनायाम प्रसून शोधव कुटह, क्या इन मुरकट्टों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है। करने का प्रयत्न ही तो कर रहा हूँ, परंतु पंडित जी के पास तो फचफची गायत्री थी, वह कहाँ पाऊँ। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जो भर जाता है वह अकारण नहीं। तुम भूत भगावन हो, तुम विहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नशावन हो। तुम्हें दीर्घकाल से जानता था पर पहचानता नहीं था, अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। जानता हूँ कि बुद्धिमान लोग कहेंगे कि यह महज गप्प है। यह भी जानता हूँ कि कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार न साबित होगी। संभावना तो यहाँ तक है कि पत्ता भी न खड़का हो और पंडित जी ने अजो पांत पूरी कहानी बना ली हो, मगर बलिहारी है इस सर्जन शक्ति की। क्या शानदार कहानी रची है पंडित जी ने। आदिकाल से मनुष्य गप्प रचता है, अब भी रचे जा रहे हैं। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था, जहां वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था। वह मिथकीय तत्वों से काम लेता था। मिथक गप्पे भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। आज भी हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं है। भाषा बुरी तरह अर्थ से बंधी हुई, उसमें स्वच्छंद संचार की शक्ति सिंह से छिंटर होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता है, आश्रय लेता है भाषा का, अभिव्यक्त करता है भाषातीत को। मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यान्वयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आवरणों की सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है, दोनों धोखा खाते। भूत तो स्वरसों में है, जो सत्य है वह सृजना शक्ति के सुनहरे पात्र में मुंह बंद किए ढका ही रह जाता है। एक पर एक गप्पों की परतें जमती जा रही, सारी चमक सीपी की चमक में चांदी देखने की तरह मन का अभ्यास मात्र। गप कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, मगर छोड़िए भी, देवदारू भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरत भी है, खुसत भी। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड्ड के एक प्रांत में उगे हैं, आधे जमीन में आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पाधा जान पड़ते। एक अल्हर किशोर है, सदा हंसता सा कवि लगता, जी करता है इसे प्यार किया जाए। सदा से ऐसा होता आया, हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। एक इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। पार्वती माता की छाती से दूध धड़क पड़ा था, कालिदास खुद कह गए हैं। मगर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संवेदन 22 पसेरी दिखते हैं। वे लोग सबको एक ही जैसा दिखते हैं, उनके लिए खूसट पाग वह सूम, वह सनकी, वह झिझोटा, वह झबड़ेला, वह चपड़ेंगा, वह गडरौना, वह खिटखिटा, वह झक्की, वह झुमड़ेला, वह ढोकटा, वह नटखट, वह चुनमुन, वह बांकुड़ा, वह चौड़ंगी सब समान है। महादेव जी के बेटे के कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते थे। एक मर्मत गजराज आए और अपने गजस्थल की खाज मिटाने के लिए उसी पर बिल पड़े। जड़े हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल छूट गई और आप खाज मिटाते रहे। महादेव जी को बड़ा क्रोध आया, आना ही था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया, पर मेरे सामने जो अल्हड़ कवि है उसका क्या होगा? वह तो कहिए कि इधर हाथी आते ही नहीं। फिर भी डर तो लगता ही है, हाथी ना सही, गधों और खच्चरों से तो शहर भरा पड़ा है। लेकिन मैं जिधर हूँ उधर वे भी कम ही आते हैं, गाहे बेगाहे आ भी जाते हैं, पर उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती। उन्हें देखने को और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। बहरहाल कोई खास चिंता की बात नहीं है। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें न आदत है न परवा। संत लोग चिल्लाकर थक गई कि मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अगर तलवार बंद ही रह गई, म्यान के मोल भाव का बाजार गर्म है। व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है? अर्थमात्र जाति है, छंद्रमात्र व्यक्तित्व है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है, छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा करता है। बात यह कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं, हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। अगर मुझमें इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुर बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बड़भागी होता जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे सौहृदय कहा जाता है। देवदारू की उर्ध शिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है। मेरे पास कवि कौशल नाम की चीज नहीं है, मैं अपने विशिष्ट अनुभवों का साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। कवि होता तो कर लेता, उपमानों की छटा खड़ी कर देता, सौहृदय के चित्त के ताल पर नृत्य करने योग्य छंद ढूंढ लेता, ध्वनियों की नियत संचारी क्षमता का ऐसा समा बांधता कि सुनने वाला का मन मयूर की भांति नाच उठता। पर मेरे भाग्य में यह कुछ भी नहीं है, केवल आंख फाड़ कर देखता हूँ। पाषाण की कठोर छाती भेद कर यह देवदारू जाने किस पाताल से अपना रस खींच रहा है और काम ह्रस्व छाया का वितान तांता हुआ ऊर्ध लोक की ओर किसी अज्ञात निर्देशक की तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है। यह इतनी उंगली क्या यूं ही उठी हुई है? कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है, भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूँ, पर बता सकूँ ऐसी भाषा कहाँ है? हाय, मैं असमर्थ हूँ, मूक हूँ। मीमांसकों का एक संप्रदाय मानता था कि शब्द का अर्थ वहां तक जाता है जहां तक वक्ता ले जाना चाहता है। वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते। वे लोग कहते हैं कि जब जैमिनी मुनि ने कहा था कि यत्परः शब्द स्व शब्दार्थ, तो उनका यही मतलब था। मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। कहाँ विवक्षा इतनी दूर तक ले जाती है? सुंदर शब्द का प्रयोग करके मैं जो कहना चाहता हूँ वह कहाँ प्रगट हो पा रहा है? कहना तो बहुत चाहता हूँ, कोई समझे भी तो नहीं। शब्द उतना ही बता पाता है जितना लोग समझते हैं। वक्ता जो कहना चाहता है उतना कहाँ बता पाता है वह? दुनिया में कवियों की जो कदर है वह इसलिए है कि वे जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा सकते हैं। पेशन धर्मिता उनके कहने का एक प्रधान गुण है। मैं नहीं पहुँच पाता हूँ उस अर्थ को जिसे मेरा मन अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं शब्दों और छंदों का ऐसा अस्त्र नहीं पाता हूँ जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोताओं के हृदय में चुभ जाए। अर्थ निश्चय ही वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं है, वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है। उसमें लय नहीं, संगीत नहीं, नाद नहीं, गति नहीं, वह स्थिर है। शब्दों के गतिशील आवेश से वह हिलता है, भड़बड़ाता है, नए नए परिवेश में सजता है और तब कहीं नया अर्थ पैदा करता है। अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सहारे नया अर्थ देता है। लेकिन देवदारू है शानदार वृक्ष, हवा के झोंकों से जब हिलता है तो इसका अभिजात्य झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय की उस भाग की जहाँ से भागीरथी के निर्झर झरते रहते शीतल मंद सुगंध पर्वत की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्जर शिखरों की देन कहा, सुगंधि को आसपास के वृक्षों के पुष्प के संपर्क के बदौलत घोषित किया। लेकिन मंदी के लिए मुंह कंदित देवदारू को उत्तरदायी ठहराया। देवदारू के बारंबार कंपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युग युगांतर की संचित अनुभूति ने ही मानो यह मस्ती प्रदान की है। जमाना बदलता रहा है, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है, कितने ही मैदान में जा बसे और खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उठ रहा, समझौते के रास्ते नहीं गया और उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसे मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा है, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो। बोटे डुढ़े कहा सजनी, डिहुड़े डुढ़े कहूँ ऊँट की चोरी, हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा दुर्गम साथी दुर्लभ है। समाप्त।